प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार अपने प्रियों के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु हमारे पापों को लेकर इसलिए क्रूस पर मर गया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पहले तो तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। और तब वह कहता है परिवार के बारे में, ऐसी पत्नियां भी अपने अपने पति के अधीन रहे जिससे कि उनके पवित्र चाल चलन को देखकर अविश्वासी पति भी प्रभु की ओर खींच आए। मसीह यीशु ने दुख उठाकर हमारे लिए उदाहरण स्थापित किया है, हमें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उसने पाप नहीं किया, मुंह से छल की बात नहीं की। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता के आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रता पन दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो प्रभु आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से हमें आशीषित करने पाए। हाँ प्रभु, जब हम फिर से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हम सब की सहायता करें। इस समय फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद से अध्ययन को आरंभ करते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। पति देखेगा कि उसकी पत्नी बदल गई है और परमेश्वर के निमित्त पवित्र जीवन जीना चाहती है और सांसारिक बातों से दूर रहना चाहती है, यही उसकी गवाही है। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि एक और महिला ने आकर मुझसे कहा, मैं अपने पति को हर रविवार आराधना में लाती हूँ, परंतु वह बदलता नहीं है। वह थी भी ऐसी कि अपने पति को बलपूर्वक आराधना में ले जाती थी। उस महिला ने कहा, मैं सोमवार को नाश्ते के समय उससे रो रो करके कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे। शाम को भी जब वह काम पर से लौटता है तो खाना खाते समय मैं रो रो कर उससे याचना करती हूँ कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे। मैं सोचता रहा कि मैं भी पत्नी का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा कि वह एक वर्ष तक अपने पति से प्रभु के बारे में बात ना करे। वह कहने लगी, आप यह कहते हैं कि मैं गवाही ना दूं? मैंने कहा, पत्रस कहता है कि अपने पति को मसीह में जीतने के लिए निशब्द प्रचार करें। आपका जीवन कैसा है? उसके समक्ष आपका आचरण, आपका चाल चलन कैसा है? वह चौंकी, क्योंकि वह जानती भी थी कि उसका आचरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। उसने मेरी बात मान ली और 6 महीने में उसका पति आराधना में आया और प्रभु को ग्रहण किया। निःशब्द प्रचार ने उसे जीत लिया था। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 3 पद में यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यह पद श्रृंगार के विरुद्ध नहीं है। रोमी युग में स्त्रियां केश श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती थी। वे नकली बाल भी लगाती थी, बालों में भी गहने पहनती थी। यदि आप अपने शरीर के आकर्षण से पुरुष को मोहित करती हैं, तो विवाह पश्चात आप उसे कभी मसीह में नहीं जीत पाएंगी। पत्नी कितना भी इत्र लगा ले, कैसे भी यौन आकर्षण का वस्त्र पहने, वह अपने पति को प्रभु में कभी जीत नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि विश्वासी स्त्री को फैशन के कपड़े पहनना चाहिए। मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ाता था। वहां किसी ने लड़कियों को भ्रम में डाल दिया था कि उन्हें ना तो श्रृंगार करना है, ना ही वस्त्रों पर ध्यान देना है। मैं उनसे सदा ही कहता रहता था कि हमें अपने वस्त्रों से अपना व्यक्तित्व सजाना चाहिए, जबकि कुछ के पास अधिक नहीं है। थोड़ा बहुत सौंदर्य प्रसाधन काम में लेना अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप मुर्दा घर से उठकर आ रही हैं। यह आपको परमेश्वर के समक्ष प्रशंसनीय नहीं बनाता है। मेरे प्रियो, पत्रस के कहने का अर्थ है कि आप योनाकर्षण द्वारा अपने पति को प्रभु में नहीं जीत सकती हैं। आप अपने श्रृंगार के द्वारा अपने पति को प्रभु में नहीं ला सकती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि पत्नियों को कैसे रहना है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, स्त्री को गहने तो पहनना चाहिए, परंतु नम्रता और मन की दीनता के। रूत की पुस्तक में बोअज रूत को देखकर उससे प्रेम करने लगा था, परंतु ध्यान दीजिए, वह उसके चरित्र की प्रशंसा सुन चुका था। वह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेम करने लगा था, जबकि वह उसके खेत में काम करने के लिए गई थी। आप सोच सकते हैं कि जब वह खेत में काम कर रही है तो किसी भी अधिक सुंदरता या श्रृंगार के साथ नहीं है। फिर भी बोअज ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व को देख रहा था। मेरे प्रियो, आज अनेक सौंदर्य प्रसाधन हैं और उनके उपयोग में मुझे कोई भी बुराई नहीं दिखती है। आपको अधिक आकर्षण दिखना चाहिए। हमें अधिक से अधिक अच्छे दिखना है। किसी ने कहा है, नए के प्रयोग में पहले ना हो, परंतु न ही अंतिम हो कि पुराना अलग हो। अच्छा पहने, अच्छे दिखें, परंतु किसी को प्रभु में जीतने के लिए उसका उपयोग ना करें। आज भीतरी सुंदरता की आवश्यकता है। यही एक महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि अपनी सुंदरता के द्वारा लोगों को प्रभु में लाओ। जी हाँ, यह गलत है। पत्रस ऐसा नहीं कहता है। उसका कहना है कि भीतरी सुंदरता की आवश्यकता है। तब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय के 5 पद में, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। मेरे मित्रों, पुराने नियम में ऐसी अनेक स्त्रियां थीं। रूत का नाम मैं पहले ले चुका हूं, वह प्रभु यीशु के वंशजों में से थी। राहेल भी सुंदर थी और याकूब उससे प्रेम करने लगा था। वह याकूब के अंधकारमय जीवन में एक ज्योतिर्मय अंश थी। पहला पत्रस 3:6 में हम पढ़ते हैं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यहां पर हम देखते हैं सारय भी बहुत सुंदर थी। वहां के राजा उसकी सुंदरता के गुलाम थे। अब्राहम को सारय की सुंदरता के कारण बहुत परेशानी उठाना पड़ा था, परंतु वह अब्राहम को अपना प्रभु स्वामी कहती थी। वह अब्राहम की ओर आशा से देखती थी। पति की ओर आशा लगाना एक बहुत अच्छी बात है। अब पत्रस पतियों से कहता है, जिससे हम पहला पत्रस 3:7 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहां मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं, परंतु ये निर्दोष पति के लिए हैं, चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी। पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वह एक भंगुर पात्र है और इस कारण उसका आदर करे। मेरे विचार में महिला मुक्ति आंदोलन अधिक नहीं चल पाएगा। स्त्री एक स्त्री होना चाहती है जैसे पुरुष पुरुष होना चाहता है, क्योंकि वह एक भंगुर पात्र की नाई है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। घर में स्त्री को पहले प्रवेश करना चाहिए। घर से बाहर पत्नी की सुरक्षा पति के हाथ में होती है। अपना मान खोकर स्त्री ऊपर नहीं उठती है, वह नीचे गिरती है। उसका सम्मान करके उसे उसका अधिकार देना आवश्यक है। मेरे विचार में हर एक पति को अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वह कोई विशेष जन है। लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यदि पति पत्नी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहें तो प्रार्थना करना व्यर्थ होगा, जैसा कि बहुत सारे परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कुत्ते बिल्लियों की नहीं सुनता है। एक मन एक मत होने पर प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने विवाह संपूर्ण मानव जाति को दिया है, न कि केवल विश्वासियों को या इसराइल को। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, आदम को बनाया, उस समय वह अकेला था। मेरे विचार में परमेश्वर ने आदम को बहुत समय अकेला रखा, जिससे कि उसे यह बोध हो जाए कि उसमें किसी बात की कमी है। धर्मशास्त्र कहता है कि आदम के अकेले रहने के बाद परमेश्वर ने उसमें से स्त्री को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 2:23 में इब्रानी भाषा में लिखा है कि स्त्री को ईशा कहा जाए, क्योंकि वह ईश पुरुष से निकली है। उत्पत्ति 2:18 में उसे आदम का सहायक कहा गया है, अर्थात उसके लिए एक उचित साथी। दूसरे शब्दों में वह उसका आधा भाग थी। आदम केवल आधा था, उसका दूसरा आधा भाग स्त्री थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप विवाह को केवल पुरुष का अधिकार नहीं कह सकते कि वह जैसी आज्ञा दे वैसा ही आप करें। वह उसकी सहायक है, उसकी अर्धांगिनी है, वह उससे प्रेम करने के लिए बनाई गई है। पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए रखे गए हैं, प्रेम करने के लिए रखे गए हैं। यह विवाह का आदर्श रूप है। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं कलीसिया में व्यवहार। पहला पत्रस की पत्री 3:8 में लिखा हुआ है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। विश्वासियों को एक मन, सहानुभूति से पूर्ण कोमल हृदय और सद्भावना से पूर्ण होना है। कहने का अर्थ यह है कि वे मन के दीन हो जाएं, एक दूसरे पर अधिकार न दिखाएं। विश्वासियों के साथ एक विश्वासी का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप में अच्छा व्यवहार को दिखा सके। पहला पत्रस 3:9 में आगे हम पढ़ते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। यहां पर कहता है, गाली के बदले गाली ना दो, अर्थात दूसरा गाल भी देना है। यदि कोई विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी के लिए झूठी बात कहे या बुराई करे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पलट कर वार करे। जी नहीं, वह उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे, परमेश्वर उसे देख लेगा, बदला लेना उसका काम है। यदि हम ऐसा करें तो कलीसिया में गुटबंदी और कलह समाप्त हो जाएंगे। हमें स्मरण रखना है कि हम प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम याजकीय समाज हैं, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसका प्रतिनिधित्व करें। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मेरे प्रियो, हम सब जीना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से आज अनेक विश्वासी जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, वे जीवन का परिपूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक बार मेरी कलीसिया में जहां मैं जाता हूं, युवा समूह का अगुआ जो मेडिकल का विद्यार्थी था मुझसे बोला, भाई साहब, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक संतरे के समान हो, जिसमें से मैं एक एक बूंद रस निकाल लूं। मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में जीना चाहते हैं, तो पत्रस आपको एक सूत्र सुझाता है, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, छल की बातें करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। तब वह यह सुनकर शांत हो गया। पहला पत्रस 3:11 में हम आगे पढ़ते हैं, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। परमेश्वर की संतान बैठकर पवित्रता का स्वांग न रचे, हम जीवन जिए और जी करके दिखाएं, परंतु छल कपट से मुक्त रहें। बुराई छोड़कर शांति का कारण बने। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के लिए जिए। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिए और उस महान शांति को अपने जीवन में प्राप्त करें। पहला पत्रस 3:12 में वह आगे कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यह धर्मशास्त्र का एक महान अंश है। पत्रस यहां भजन संहिता 34:15-16 का संदर्भ दे रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मेरे मित्रों, यह एक कठोर वचन है और धर्मशास्त्र बार बार इस बात पर बल देता है। परमेश्वर ने अपनों की प्रार्थना सुनने की प्रतिज्ञा की है, उसमें अन्यों की प्रार्थना सुनने का दायित्व नहीं उठाया है। पापी मनुष्य प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, वह विनती करता हूं कि तू मुझे प्रभु यीशु में पापी स्वीकार कर ले। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। लोगों का मानना है कि हम कैसा भी जीवन जिए और कष्टों में परमेश्वर को पुकारें, तो वह उत्तर देगा। मेरे प्रियो, एक पापी आकर अपनी रोगग्रस्त बच्ची के लिए प्रार्थना करता है, यह भावुकता है। और मैं कहता हूं कि यह मूर्खता ही नहीं, धर्मशास्त्र विरोधी है। पापी परमेश्वर के साथ संबंध सुधारने तो परमेश्वर के पास आए और उसकी प्रार्थना वह सुनेगा। आज का प्रचलित विचार यह है कि आप परमेश्वर को किसी भी परिस्थिति में पुकारें तो वह आपकी प्रार्थना सुनेगा, चाहे आप उसकी संतान हो या ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने परायों की प्रार्थना सुनने का वचन नहीं दिया है। सबोपदेशक की पुस्तक 2:17 में एक ऐसे मनुष्य की अभिव्यक्ति है जिसने जीवन में सब कुछ किया और वह एक भ्रष्ट मनुष्य है। मैंने अपने जीवन से घृणा की क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। उसका अनुभव यही था। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो सांसारिकता में लीन हैं और अकस्मात ही आंख खुलने पर उन्हें बोध होता है कि यह सब कुछ व्यर्थ है। तब तक जीवन आधा हो चुका होता है। जीवन एक सार है, निरर्थक है। अतः उनका आत्महत्या करना आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ उचित संबंध न हो तो आप परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। इसका अर्थ क्या यह है कि परमेश्वर की संतान संसार की परेशानियों से हटकर ऊंचा जीवन जी रहे हैं? सुनिए पत्रस क्या कहता है, 1 पत्रस 3:13 में, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा सुरक्षा कवच पहना दिया है कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है? आइए हम पढ़ते हैं आगे, 1 पत्रस 3:14 में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। सही बात पर कष्ट उठाना परमेश्वर की संतान के लिए आनंद की बात है, और यही कारण है कि आज मसीही विश्वासी अपने जीवन में कष्टों का सामना करते हैं और कुछ भी विरोध नहीं करते। कुछ विश्वासी अन्यों को गवाही देने में विष उगलते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रभु के लिए खड़े हैं। मेरे प्रियो, यदि हमने प्रभु के लिए उचित स्थान लिया है और हम कष्ट उठाते हैं तो यह आनंद की बात है। परमेश्वर की संतान इस संसार के कष्टों से मुक्त नहीं है, अलग नहीं है। किसी ने कहा है, प्रभु यीशु ने मसीही जीवन को एक भोज कहा है, पिकनिक नहीं। यह कैसा सत्य है? उसने कभी नहीं कहा कि हम यहां आराम से रह पाएंगे। मेरे प्रियो, काश मैं अगला पद ऐसा समझा पाता कि आपका मन धन्य हो जाता। मैं यथा संभव प्रयास कर रहा हूं, प्रयास करूंगा कि आप समझ पाएं। लिखा है 1 पत्रस 3:15 में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इसका अर्थ है कि आपको बाइबल का अधिक ज्ञान होना है। आज की त्रासदी है कि बहुत लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं परंतु आलोचक आपको बिल्ली के समान उनमें उलझा सकता है। वे बच नहीं सकते क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। लिखा है, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। ओह, क्या आपके मन में पवित्र स्थान है? आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या आपके मन में प्रभु को पवित्र मानने के लिए स्थान है? यदि हाँ, तो मनुष्य जान लेगा कि आप परमेश्वर के हैं। आपको सदैव मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको धार्मिकता की बातें सुनाकर किसी के कान भेदने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हमें अपने मन में प्रभु को पवित्र समझने की कैसी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझेंगे तो हम स्वयं भी परमेश्वर की पवित्रता में जीने की कोशिश करेंगे। हबक्कूक की पुस्तक 2:20 में भविष्यद्वक्ता कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आज आप रविवार को आराधना में जाते हैं, परंतु संसार मौज मस्ती में लगा हुआ है। वह परमेश्वर के सामने शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझना है। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए यह गंभीर बात है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पवित्र समझें और अपने जीवन में पवित्रता को अपनाएं, ताकि हम पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर को धन्य कहने पाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।